नमस्कार भारत, तारीख 6 जुलाई दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया मंत्रालयों का बंटवारा, सबसे बड़ा फेरबदल, स्मृति ईरानी का मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिला प्रकाश जावड़ेकर को।
पनिश किया गया है या नहीं ये तो नहीं मालूम मुझे, निश्चित रूप से उनका स्वभाव थोड़ा गर्म है और हर चीज में राजनीति लाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है।
अमरीकी जांच एजेंसी FBI ने कहा गुप्त जानकारियों को लेकर हिलेरी क्लिंटन ने बरती लापरवाही, लेकिन आपराधिक मामला नहीं। 3 प्रेरणादायी शख्सियतों को मिला BBC आउटलुक एनिवर्सरी अवार्ड, भारत की ट्रैफिक वार्डन डॉरिस फ्रांसिस भी हैं एक।
जो चीज मुझे यहाँ लेके आई वो एक मेरी बेटी की चाहना मुझे लेके आई है, जो मेरे हृदय में बसी हुई है, मेरे रूह में बसी हुई है, जो मुझसे छीन चुकी है, अल्लाह ताला क्या चल गई।
लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार मानसी दास से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हुए दूसरे विस्तार में 19 नए चेहरों को शामिल किया गया है। राज्य मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंपा गया है। वेंकैया नायडू को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मा, विजय गोयल को खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार और सदानंद गौड़ा को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय दिया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहली बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के समर्थन में एक रैली में शिरकत की। पिछले महीने ओबामा ने आधिकारिक तौर पर हिलेरी के समर्थन देने की घोषणा की थी और कहा था कि वे उन्हें अगला राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं। उत्तरी कैरोलिना में आयोजित इस रैली में उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैं हिलेरी क्लिंटन में विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उनका चुनाव करें ताकि वो अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बन सकें। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इधर अमरीकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक जेम्स कोमी ने कहा है कि सरकारी काम के लिए निजी सर्वर और निजी ईमेल के इस्तेमाल करने के मामले में हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि FBI को इस बात के सबूत जरूर मिले हैं कि ईमेल के संचालन में हिलेरी ने बेहद लापरवाही का परिचय दिया और कई ईमेल में गोपनीय जानकारियां थीं। ये मामला तब का है जब हिलेरी क्लिंटन अमरीका की विदेश मंत्री थीं। सऊदी अरब के शाह सलमान ने सोमवार को मदीना में पैगंबर की मस्जिद के पास हुए आत्मघाती हमले पर कहा है कि वो इस हमले के दोषियों से कड़ाई से निपटेंगे। शाह सलमान ने कहा कि जो लोग हमारे युवाओं के दिल और दिमाग को निशाना बना रहे हैं उनसे हम बेहद कड़ाई से निपटेंगे। अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने स्वीकार नहीं की है। इराकी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रविवार को बगदाद में हुए आत्मघाती बम धमाके में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 250 तक पहुंच गई है। साल 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में हुए हमले के बाद इराक की राजधानी में हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले की जिम्मेदारी खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले समूह ने ली है। साल 2003 में हुए हमले के बाद के बारे में ब्रिटिश रिपोर्ट बुधवार यानी कि आज जारी की जा सकती है। जांच समिति के अध्यक्ष जॉन चिलकॉट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट के बाद भविष्य में इतने बड़े पैमाने पर सैन्य हस्तक्षेप अधिक विश्लेषण और राजनीतिक न्याय के बिना संभव नहीं होगा। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा, नमस्कार भारत, स्वागत है आपका। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। जहां 19 नए चेहरों को जगह मिली तो वहीं 5 राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
मैं प्रकाश केशव जावड़ेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं विजय गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद निगाहें इस बात पर थी कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है और देर शाम ये सूचना भी आ गई, कुछ के विभाग बदले, कुछ की पदोन्नति की गई। सबसे बड़ा बदलाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय में देखने को मिला, जहां स्मृति ईरानी को हटाकर मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर को सौंप दी गई। इसके अलावा अनंत कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय, वेंकैया नायडू को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विजय गोयल को खेल मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत सिन्हा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया, जबकि मंत्रिमंडल में नए शामिल किए गए एमजे अकबर को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार मिला। मंत्रालयों में हुए बदलाव को लेकर हमारे सहयोगी अमरीश द्विवेदी ने बात की बिजनेस स्टैंडर्ड में वरिष्ठ पत्रकार अदिति फड़नीस से, और सबसे पहले यही पूछा, सोच क्या थी?
मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंस ऑडिट प्रधानमंत्री ने किया था उसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। जिन मंत्रियों का काम संतोषजनक नहीं पाया गया उनको या तो हटा दिया गया है या अच्छा काम किया है तो उनको प्रमोशन दे दिया गया है। प्रमोशन के तौर पर अगर देख तो मनोज सिन्हा को उनको कम्युनिकेशन का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। अगर आप देखें तो अनंत कुमार जो कि बहुत ही सीनियर मंत्री हैं उनको भी प्रमोट करके पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि फेरबदल की ये है कि स्मृति ईरानी को एचआरडी मंत्रालय से हटा के उनको कपड़ा विभाग में डाल दिया है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। इस मंत्रालय में करने के लिए बहुत कुछ है और स्मृति ईरानी का लगभग सभी लोगों से झगड़ा चल रहा था। प्रकाश जावड़ेकर एक परिपक्व नेता हैं और सुलझे हुए दिमाग के हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आगे जो भी लिबरलाइजेशन सोशल सेक्टर में करना है वो मेरे ख्याल से मानव संसाधन मंत्रालय से शुरू हो।
अदिति जी, स्मृति ईरानी की बात करें, आपको क्या लगता है कि उनको एक तरह से पनिश किया गया है, तमाम जो बयान हैं उनकी वजह से या उनके उग्र स्वभाव की वजह से उनको पनिश किया गया है, और जावड़ेकर जैसा आपने बताया कि उनको प्रमोट किया गया है?
पनिश किया गया है या नहीं ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने खुद एक समिति बैठाई, सीएसआर सुब्रमण्यम को उस समिति का सचिव बनाया और फिर उस समिति की रिपोर्ट ही उन्होंने फिर लागू नहीं की, उसको सार्वजनिक नहीं किया। मामला इस कगार पर आ गया कि टीएसआर सुब्रमण्यम को खुद कहना पड़ा कि हम अपने आप ही इस रिपोर्ट को रिलीज कर देंगे। उस रिपोर्ट में बहुत ही बेसिक चेंजेस गिनाए थे कि किस तरह से इस मंत्रालय को चलाना चाहिए। तो अब इस तरह की बात होगी तो फिर तो सरकार की छवि इससे बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। निश्चित रूप से उनका स्वभाव थोड़ा गर्म है और हर चीज में राजनीति लाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है।
जयंत सिन्हा जो एमओएस थे वित्त मंत्रालय में, उनको सिविल एविएशन में भेजा गया है, इनको क्या यशवंत सिन्हा जो पार्टी के खिलाफ कई बार बोलते हुए सुने जाते हैं उसकी वजह से उनको भेजा गया है अच्छा काम करने के बावजूद, या कोई और वजह है?
नहीं, मेरे ख्याल से सिविल एविएशन को हमें एक डिमोशन की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इधर हाल में सिविल एविएशन पॉलिसी लागू हुई है, उसके फाइन प्रिंट को कार्यान्वयन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पर भी एक सुलझे हुए दिमाग की जरूरत है। तो एमओएस उनको भेजा गया है इसलिए कि वो मंत्रालय को ढाल सकें जो सरकार की सोच है उसके अनुकूल। नई सिविल एविएशन पॉलिसी लागू हुई है, उस जयंत सिन्हा उन पेचीदा चीजों को समझते हैं कि कहाँ निवेश होना चाहिए और कहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और क्या चीज प्राइवेट सेक्टर में जानी चाहिए और क्या चीज जरूरी नहीं है।
खेल मंत्रालय विजय गोयल को और एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स एमजे अकबर को, कैसा चुनाव है?
मेरे ख्याल से एमजे अकबर को एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स बनाना बहुत ही एक अच्छा कदम है। पढ़े लिखे भी हैं, भारत का इतिहास और भारत का परिप्रेक्ष्य समझते हैं और जो अनर्गल बातें होती हैं जो कि जनरल वीके सिंह कभी कभी बोल देते हैं उनको ठीक करने के लिए वहां पर उनको भेजा गया है। वैसे भी सुषमा स्वराज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, विजय गोयल को इंडिपेंडेंट चार्ज खेलकूद का दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए उचित है।
अदिति फड़नीस विश्लेषण कर रही थी, और अब फिर से विश्लेषण कर लेते हैं इस घटना का, इस खबर का। जुबैर अहमद साहब मौजूद हैं। जुबैर, आश्चर्यजनक बातें सिर्फ क्या स्मृति ईरानी है या और भी कई आश्चर्य हैं इसमें?
खास तो स्मृति ईरानी है, क्योंकि अभी तक यही लोग समझ रहे थे कि बहुत अच्छा कर रही हैं और ये कि इनको हटाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन
लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे और स्मृति ईरानी का जिक्र किया ही नहीं था,
किया ही नहीं था हम लोगों ने, और हम दूसरी बातों पर जा रहे थे। लेकिन देखिए, बात ये नहीं है कि उन्हें पनिश किया गया, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पनिश किया गया है। वो प्रधानमंत्री के बहुत ही करीब हैं, बहुत बड़ी चहेती हैं वो प्रधानमंत्री के, और बीजेपी में सब जानते हैं। मैं भी जब 2013 में प्रधानमंत्री, उस वक्त जो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उन्हीं के पास गया था, स्मृति ईरानी के पास, क्योंकि मुझे पता है कि इतने करीबी उनसे। तो एक दोस्त के नाते प्रधानमंत्री ने उनको फायरिंग लाइन से हटा दिया कि इतना ज़्यादा इतने विवादों से घिरी
लगातार निशाने पर
थी और फिर वो एक अच्छा बोलने वाली हैं, यंग है, वो भी गलतियां कर रही थी, तो उनको फायरिंग लाइन से हटा के एक ऐसा मंत्रालय दे दिया जहाँ पे वो आराम से रह सकती हैं,
ठंडे बस्ते में डाल दिया।
ठंडे बस्ते में नहीं, मुझे लगता है कि उनको उनका इस्तेमाल अभी थोड़े महीनों के बाद होने वाला है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार शुरू होगा मेरे ख्याल से उनका इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाएगा। और हमें पता है कि वो बहुत दबंग हैं, बोलती अच्छा हैं, क्राउड पुलर हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के आप जितने भी मंत्री उनके घर के बाहर आप जाएं तो जितनी भीड़ उनके घर के बाहर होगी उतनी भीड़ आप दूसरे मंत्रियों के यहाँ नहीं देखेंगे, तो इससे उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी लोकप्रियता पार्टी के अंदर जो है पता चलती है। तो उसको उनको फायरिंग लाइन से हटा दिया गया है, लेकिन उनका इस्तेमाल बाद में उत्तर प्रदेश में होने वाला है।
और यही शायद बड़ी वजह रही होगी जब कांग्रेस की दिग्गज उम्मीदवार सोनिया गांधी के सामने अगर किसी को खड़ा करना था तो स्मृति ईरानी का नाम सामने आता था और उन्होंने काफ़ी वोट भी बटोरे। हम कल चर्चा कर रहे थे कि 75 साल वाला जो सिद्धांत है और उसके चलते शायद नजमा हेपतुल्ला और जो वरिष्ठ नेता हैं वो गायब हो जाए, तो इन्होंने क्या अपने सिद्धांत से समझौता क्यों कर लिया?
मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी समझौते हुए हैं, हमें ये भी पता चला था, मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये चर्चा हो रही थी कि जेपी नड्डा को वो हटा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लाएंगे ताकि वो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला उसकी ठीक ठाक से पार्टी को और मजबूत किया जा सके, संगठन को मजबूत किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर हमने ये भी हमें पता चला था कि नजमा हेपतुल्ला 75 साल से ज़्यादा के हो गए, कलराज मिश्रा भी 75 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं,
यही मध्य प्रदेश में भी चल रहा था, बाबूलाल गौर
वहाँ किया भी क्या, हाँ, तो वो नहीं कर सके। और उसकी एक वजह ये भी है कि नजमा हेपतुल्ला एक अकेली मुस्लिम मंत्री हैं जो कैबिनेट रैंक की हैं, तो उनको हटाना उन्होंने समझा यूपी इलेक्शन के से पहले ये गलत मैसेज जा सकता है, ये हमें बताया लोगों ने कल। फिर ये कि कलराज मिश्रा का तो पहले ही से ये दुविधा भी थे कि इनको चेंज करें या ना करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला और वहाँ उनकी पकड़ है और वो पंडित वोट्स 10% जो उत्तर प्रदेश में, तो उसको ला सकते हैं, तो इसलिए नहीं हटाए।
जुबैर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुबह आने के लिए और इतना विश्लेषण करने के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
रुख बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का करते हैं। अमरीकी जांच एजेंसी FBI ने सरकारी काम के लिए निजी सर्वर और निजी ईमेल इस्तेमाल करने के मामले में हिलरी क्लिंटन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर नहीं करने का फैसला किया है। और जानकारी के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने वॉशिंगटन में BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से संपर्क साधा और पूछा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यही समझाइए कि ये मामला क्या था और इसमें हुआ क्या।
देखिए, ये पूरा मामला तब का है जब हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और उन्हें विदेश विभाग के सरकारी ईमेल की जगह अपने निजी सर्वर से नियंत्रित अपने निजी ईमेल का उन्होंने इस्तेमाल किया था। अमेरिकी संघीय कानून के अनुसार जब कोई वरिष्ठ मंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसके जो भी सरकारी ईमेल या कागजात होते हैं वो सरकारी संपत्ति बन जाते हैं, लेकिन चूंकि हिलरी क्लिंटन निजी सर्वर और ईमेल का इस्तेमाल कर रही थी तो ऐसा नहीं हुआ। और जब ये बात सामने आई तो उनसे कहा गया कि वो अपने ईमेल विदेश विभाग को सौंप दे, तो उनकी टीम ने उनके अकाउंट से सभी निजी ईमेल डिलीट करके लगभग 55,000 ईमेल विदेश विभाग को सौंप दिए। तब से ये खबर सुर्खियों में रही है। उनके विरोधियों ने आरोप लगाया कि वो जानबूझकर निजी फायदे और अपने पति बिल क्लिंटन के क्लिंटन फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने के लिए निजी ईमेल का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन हिलरी ने जवाब दिया था कि उनके पहले भी विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस और कॉलिन पावेल ने जिस ईमेल इस्तेमाल करते रहे हैं। बाद में उन्होंने जरूर माफी मांगी कि आज के माहौल में शायद ये करना सही नहीं था। और फिर इस पूरे मामले की FBI जांच शुरू हुई और मंगलवार को FBI के निदेशक जेम्स कॉमी ने एक संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया कि इस गहन जांच के बाद, लगभग एक साल ये चली है जांच, उनकी ये राय है कि इस मामले में क्लिंटन के खिलाफ कोई आरोप दाखिल करना उचित नहीं होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने क्लिंटन की तीखी आलोचना भी की। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information, there is evidence that they were extremely careless.
तो जेम्स कोमी कह रहे थे कि एफबीआई को इस बात के सबूत जरूर मिले कि ईमेल के संचालन में क्लिंटन ने बेहद लापरवाही का परिचय दिया और कम से कम 110 ईमेल ऐसे थे जिनमें गोपनीय जानकारी थी। और एफबीआई निदेशक का कहना था कि पूरे विदेश विभाग में ही ईमेल की सुरक्षा को लेकर एक ढुलमुल सा रवैया था, लेकिन हिलरी क्लिंटन की तरफ से निजी ईमेल का इस्तेमाल किसी गलत मकसद या नियत से किया गया, इस तरह के सबूत उन्हें नहीं मिले हैं।
ब्रिजेश, ये बताएं कि राजनीतिक रूप से इसका क्या असर देखते हैं आप?
देखिए, हिलरी क्लिंटन के लिए पूरा मामला पूरे एक साल से बहुत बड़ा राजनीतिक सरदर्द बना रहा है। पार्टी की उम्मीदवारी की रेस के दौरान जो कई सर्वेक्षण हुए हैं उनमें जो विश्वास और ईमानदारी के जो मुद्दा है उस पर मतदाताओं ने उन्हें हर बार बेहद कम नंबर दिए हैं और ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में भी। रिपब्लिकन पार्टी के जो उनके विरोधी हैं उन्होंने इस विवाद का उदाहरण देते हुए कहा है कि क्लिंटन परिवार खुद को कानून से ऊपर मानता है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एफबीआई के फैसले की तीखी आलोचना की है और कहा है कि ये दिखाता है कि पूरा तंत्र हेराफेरी से चल रहा है। हिलरी क्लिंटन, उनके जो चुनावी अभियान के प्रवक्ता है, उन्होंने एफबीआई के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ये है कि पूरे नवंबर तक आप इस मामले को ठंडा होता हुआ नहीं देखेंगे। उनके विरोधी जो है बार बार इस मामले को साथ में लेकर कहेंगे, खासतौर से एफबीआई के जो निदेशक हैं उनका ये बयान कि उन्होंने बहुत लापरवाही बरती, उसका अंदाजा है कि वो चुनावी इश्तेहारों में और चुनावी रैलियों में उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मंगलवार का दिन काफी राहत लेकर आया उनके लिए और साथ ही उसी दिन पहली बार राष्ट्रपति ओबामा ने उनके साथ नॉर्थ कैरोलिना में चुनावी रैली की है और उनकी काबिलियत की भरपूर तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं एक अच्छा दिन गुजरा है हिलरी क्लिंटन के लिए।
ब्रजेश उपाध्याय बता रहे थे कि अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कहा है कि गुप्त जानकारियों को लेकर हिलरी क्लिंटन ने लापरवाही बरती, लेकिन कोई आपराधिक मामला नहीं।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख एक बार फिर से भारत का करते हैं। पंजाब में पैर पसारने का प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी ने एक और विवाद को पैदा किया। पंजाब में उप मुख्यमंत्री और शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का आरोप लगाया। आपके नेता आशीष खेतान ने पार्टी की घोषणा पत्र की तुलना गुरु ग्रंथ साहिब से की, तो वहीं पंजाब में बीजेपी प्रमुख ने भी घोषणा पत्र के मुख पृष्ठ पर स्वर्ण मंदिर के साथ आम आदमी पार्टी की चुनाव चिन्ह झाड़ू की मौजूदगी की निंदा की है। एक रिपोर्ट के साथ रविंदर सिंह रॉबिन।
आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब का 3 दिन का दौरा कई विवादों के घेरे में रहा। पहले दिन उन्होंने श्री हरमंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम में भी जाना जाता है, में माथा टेक पार्टी का 51 मुद्दों वाला युवाओं का चुनावी घोषणा पत्र अमृतसर में जारी किया, किंतु घोषणा पत्र के मुख्य पेज पर स्वर्ण मंदिर की तस्वीर के ठीक नीचे पार्टी का चुनावी चिन्ह झाड़ू की फोटो लगा दी, जिसका कुछ सिख संगठनों ने एतराज जतलाया और कई जगह पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर चल पड़ा। सिख संगठनों ने केजरीवाल को सिख समुदाय से माफी मांगने की हिदायत की है। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के नेता करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की है। हमसे बात करते हुए पीर मोहम्मद ने कहा,
आम आदमी पार्टी ने हरमंदर साहिब की फोटो लगाई है और फोटो के ऊपर आम आदमी पार्टी का जो चोन निशान है उसको लगाया है, तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर आशीष खेतान, उन्होंने कहा है कि ये दस्तावेज गीता कुरान साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जैसी पवित्र है, तो हम मानते हैं कि जो चोन मैनिफेस्टो होता है पार्टियों का वो झूठ का पलंदा होता है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब कुरान गीता जी की बात करके ऐसा बताना ये एक धार्मिक अवज्ञा है, जिसके बारे में हमने 3 दिन का टाइम जो है आम आदमी पार्टी को दिया, जेकर उन्होंने इस पर अमल ना किया तो हम जो धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ करने की जो धारा है उसके तहत उन पर मुकदमा डालेंगे।
उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी को पंजाब में भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके तहत शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी घबरा गई है। बीबीसी से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रवक्ता सुखपाल खेरा कहते हैं,
जो ट्रेडिशनल पार्टीज है पंजाब में पॉलिटिकल, चाहे अकाली दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी, उनको ऐसा लग रहा है कि एक वेव चलने लग गई है और हमारा सब कुछ खराब हो रहा है। इस बार उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, हम देंगे जवाब जहां हमको लगता है कि हमने कोई गलती की, हम माफी मांग लें, कोई बात नहीं, तो शर्म नहीं आती। लेकिन मैं अब जैसे आप ये लगाए कि हमने मैनिफेस्टो के ऊपर झाड़ू की फोटो लगा ली, झाड़ू तो सबसे हम्बल चिन्ह है सबसे गरीबों का, और हमारे गुरु साहिबान ने गरीबों को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। और अगर मैं बादल साहब से पूछूं कि आप दिल्ली में दो दिन पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर जो हमारे लेजेंड है सिख कम्युनिटी के, उसकी तुलना मोदी के साथ कर दी, मोदी बहादुर, तो क्या उनको माफी मांगनी चाहिए?
चाहे इन विरोधों के बाद केजरीवाल अपने सभी सभा स्थलों पर भारी समर्थकों को जुटाने में सफल रहे, पर जानकार मानते हैं कि पंजाब में अगर केजरीवाल धार्मिक भावनाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उन्हें यह चूक 2017 में आने वाले चुनाव में महंगी पड़ सकती है।
इन विवादों के बीच कल शाम पंजाब के खन्ना में आम आदमी पार्टी ने इन दोनों मुद्दों पर स्पष्टीकरण देते हुए माफी मांग ली। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान ने कहा कि उनका इरादा किसी भी वर्ग, समुदाय और व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस खबर के बाद अब कार्यक्रम में बात करते हैं अखबारों की। मानसी अखबार पढ़ चुकी हैं, बताइए क्या कह रहे हैं अखबार।
मोहनलाल जी, आज हिंदी और अंग्रेजी के लगभग सभी अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट विस्तार की खबर को ही पहले पन्ने पर जगह दी गई है। साथ ही लगभग सभी अखबारों ने सोमवार को सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के में पवित्र मानी जाने वाली जगह मदीना के पास हुए धमाकों के बारे में भी जानकारी दी है। हिंदी के अखबार दैनिक भास्कर ने कैबिनेट विस्तार को भूल सुधार का विस्तार लिखा है,
और स्मृति ईरानी की बड़ी सुंदर तस्वीर है जिसमें कि वो सर पे अपने माथे पर हाथ रखे हुए हैं
और ऊपर लिखा है सरकार की स्मृति लौटी। अंग्रेजी के अखबार दी पायनियर ने पहले पन्ने पर जगह दी है एक वायरल वीडियो के बारे में खबर को, जिसमें एक व्यक्ति एक कुत्ते को गर्दन से पकड़कर 5 मंजिला इमारत से नीचे फेंक रहा है। अखबार के अनुसार यह वीडियो चेन्नई में बना है और इस छात्र के दोस्त ने इसे बनाया है। यह वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया गया था जिसके बाद कई लोगों ने इस पर गुस्सा जताया था। अखबार में छपी एक अन्य खबर के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का जवाब निकाल लिया है। अखबार लिखता है कि देश में लोगों तक पहुंचने के लिए केजरीवाल इसी महीने की 17 तारीख से सोशल मीडिया यानी फेसबुक और ट्विटर और फोन के जरिए लोगों से बात करेंगे और उनके प्रश्नों के जवाब देंगे। कार्यक्रम का नाम होगा टॉक टू एके।
अच्छा, मन की बात के बाद अब
टॉक टू एके आ गया है।
बहुत कुछ
अंग्रेजी के दी इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश की बहू हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान उन्हें जो भूमिका देगा वे इसे स्वीकार करेंगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में उनकी प्रमुख भूमिका होगी। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के दौरान सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका गांधी प्रचार अभियान की मुखिया होंगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार भारत में गाय और भैंस के मांस की बिक्री को लेकर निगरानी रखने की घटनाएं बढ़ने का असर क्रिकेट के खेल पर हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। बीबीसी का आउटलुक कार्यक्रम अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर उसने अपने आर्काइव से 50 से ज्यादा प्रेरणादायक शख्सियतों को आउटलुक एनिवर्सरी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, जिनमें भारत की ट्रैफिक वार्डन डोरिस फ्रांसिस भी थी। जजों ने फैसला किया और उसके बाद इन 3 विजेताओं के नाम की घोषणा की। भारत की डोरिस भी उसमें शामिल है। डोरिस फ्रांसिस गाजियाबाद के उसी खोड़ा चौराहे पर ट्रैफिक वार्डन की भूमिका में रहती हैं जहां कुछ साल पहले उनकी बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। लंदन पुरस्कार लेने पहुंची डोरिस से बात की हमारे उर्दू सेवा के सहयोगी शफी नकी जामई ने।
मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मुझे बताइए कि क्या कहानी आपकी है, क्या क्यों बुलाया गया आपको, क्या थी कहानी जो आपको यहाँ तक ले आई?
मेरी कहानी एक बहुत दुख भरी कहानी है जिसको मैं याद करती हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं, खुशी नहीं गमी बरसती है मेरे दिल के अंदर। जो चीज़ मुझे यहाँ लेके आई वो एक मेरी बेटी की चाहना मुझे लेके आई है, जो मेरे हृदय में बसी हुई है, मेरे रूम रूम में बसी हुई है, जो मुझसे छिन चुकी अल्लाह ताला के यहाँ चली गई।
क्या हुआ था?
ऐसा हुआ था कि वो कुछ थोड़ी सी बीमार थी। 9/11/2 नवंबर की बात है, वो डेट हम भूल नहीं सकते, वो दिन नहीं भूल सकते, वो टाइम नहीं भूल सकती कि जिस वक्त मेरी बेटी ने मेरे से रुख्सत होने की घड़ी थी एक तरह से दुख की। तो हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल से जब वापस ला रहे थे उसको रेफ़र किया गया था। हॉस्पिटल वाले कहने लगे ऐसा है कि इनके थोड़ी सी स्वेलिंग है तो आप इनको दूसरे वाले हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ पर ये हम रेफ़र करे दे रहे हैं।
ठीक है।
तो हमने कहा भी टाइम है, चलिए घर से कपड़े ले लेते हैं। तो उसको जिस तक हम अपने घर के लिए वापसी आए तो बिल्कुल एकदम घर के पास जिस पॉइंट के ऊपर इस वक्त मैं खड़ी होकर लोगों की जान बचाती हूँ वहीं का किस्सा है कि उस जगह मेरी जान चली गई। इसको कहते हैं ना जान, एक जिगर का टुकड़ा।
जब ये हो गया تو پھر ڈورس نے کیا کیا, ڈورس کے دماغ میں کیا خیال آیا؟
پھر میرے جب, کیونکہ میں نے یہ استھتی دیکھی اپنے ہسبینڈ کی, تو بیٹی تو میری ہاسپٹل میں تھی, تو میں نے کہا ان کو دل کی تسلی دی, میں نے ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے تو آئیے ہم ایک نیا کام کرتے ہیں چل کے, کہ لوگوں کی جان بچ جائے اور ماؤں کی کوکھ نہ اجڑے. کوئی ماں اس طرح سے ہمارے جیسے میں رو رہی ہوں, یا کوئی فادر ایسے جا کے وہاں پہ اپنی بیٹی کو نہ ڈھونڈے, اور بہت سے ایسے ہوتا ہے, کیونکہ پریوار میں ایک نہیں مرتا, پورا پریوار مر جاتا. آج میرا پورا پریوار مرا ہوا ہے.
تو ڈورس نے کیا کرنا شروع کیا وہاں؟
پھر میں نے جو ہے وہاں پر ٹریفک کنٹرول کرنا شروع کیا سویرے 7 سے لے کے 11 بجے تک.
نہیں, صبح 7 سے لے کے 11 بجے تک جو رش آور,
جو رش آور ہوتا ہے, اس کٹ کو میں نے بڑا کروایا. بہت فائٹ کری اس کے لیے.
ڈورس نے اس کے لیے کوئی پرشکشن لیا؟
یہ خود بخود, میں تو یہ صحیح بات بولوں گی کہ مجھے یہ جو آیا ہے نا دماغ کے اندر, صرف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے.
کس وردی میں ہوتی ہے؟ پولیس والے کی وردی میں یا سادہ کپڑوں
میں؟ نہیں, جو آج میں نے آپ کے سامنے پہنی ہوئی ہے.
اچھا, یہ تو بالکل آپ سفید ویش بھوشا میں آئی ہوئی ہیں. تو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں؟ کسی نے کوئی آپتی جنک کوئی بات نہیں کی؟ وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لوگوں نے آ کے کبھی کوئی پرشن نہیں پوچھا کہ بھائی یہاں تم کھڑی کیا کر رہی ہے, کیا ٹریفک کنٹرول کر رہی ہے, تم سے کس نے کہا؟
جی جی جی, لوگوں نے کیونکہ پولیس والوں کی تو ہیلپ ہو رہی ہے نا, پولیس والے تو نہیں پوچھیں گے نا یہ لفظ مجھ سے, کیونکہ ان کو تو چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں آرام کریں, اور میرے ہوتے ہوئے ان کو ایک بہت بڑا, جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ان کو لگتا ہے کہ ایک کوئی کھڑا ہے ہمارے ساتھ.
کتنے لوگ 7 سے 11 کہ اس سمے کے بیچ اس وقت میں یہاں سے وہاں سڑک کراس کرتے ہوں گے, کچھ اندازہ ہے؟
کچھ کم سے کم نہیں تو 2 لاکھ تو میں نکالتی ہوں میرے لیے. دلی سے آنے والے جو غازی آباد نوئیڈا کام کرتے ہیں, اور غازی آباد سے دلی جانے والے, یہی سب ہوتے ہیں.
اب تو یہ سب آپ کو پہچان گئے ہوں گے نا, تو آتے ہوئے جاتے ہوئے کبھی کوئی نعرہ نہیں لگاتا زندہ باد ڈورس جی, زندہ باد؟
سب لوگ ہاتھ جوڑ کے جاتے ہیں نمسکار کر. جو لوگ مجھے پہلے مینٹل قرار دیتے تھے کہ یہ تو پاگل لیڈی ہے, میرے ہسبینڈ سے کہتے تھے یہ تو پاگل ہوگی, اس کو گھر میں لے جاؤ, تو میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے یہ پاگل ہے تو میرے لیے ہے, آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے مجھے یہ بتا دیں.
تو مجھے یہ بتائیں ڈورس کہ یہ کام کرتے ہوئے کتنا سمے بیت گیا, کتنا عرصہ ہو گیا؟
اب یہ 2009 سے لگا لیجئے,
7 سال ہو گئے کام کرتے
ہوئے.
ڈورس یہ کام کب تک کریں گی؟
جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے جی میں ایک سانس دے رکھی ہے, اور میں تو یہی چاہوں گی کہ اگر میری سانس بھی ٹوٹے وہیں ٹوٹے جہاں میری بیٹی کی سانس ٹوٹی.
یہ تھیں ڈورس فرانسس, جو کہ دلی سے سٹے غازی آباد کے کھوڑا چوراہے پر ٹریفک وارڈن کی بھومکا نبھاتی ہیں. اسی جگہ پر کچھ سال پہلے ان کی بیٹی کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی, اور اس بار آؤٹ لک اینیورسری ایوارڈ نے جن وجیتاؤں کو گھوشت کیا ہے ان میں سے یہ وارڈن ڈورس فرانسس بھی شامل ہیں.
سنسنی نہیں, وشوسنیتا کا دم,
بی بی سی ہندی.
اگلے کارکرم میں ہم آپ تک ومبلڈن کی خبریں بھی آپ کو سنائیں گے, کیونکہ فی الحال کارکرم میں اتنا وقت نہیں ہے, لیکن آپ کو بی بی سی ہندی .com پر, ایک ہماری ویب سائٹ پر, اگر آپ انوپریا پٹیل کے اپریہ بول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور انوپریا پٹیل ابھی کیندری راجی منتری بنی ہیں, اور اپنے تیکھے بولوں کے چلتے بھی یہ جانی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک خبر اور بھی ہے, یدی آپ اسمرتی ایرانی کے ویوادوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈگری سے ڈیئر تک یہ شیرشک ہے اس خبر کا. ایک اور خبر کا ذکر کرنا چاہوں گا, چھولے بھٹورے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو سڑک کے کنارے صبح ناشتے بہت کھائے جاتے ہیں, آپ کو اس کا اتہاس پڑھنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر آئیں. اور اب کارکرم میں اس سے پہلے کہ آپ سے ودا لیں, مکھیہ سماچار پھر سے سنتے ہیں.
بی بی سی سماچار. بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کی کیبنٹ میں ہوئے وستار میں کل 19 نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے. راجیہ منتری رہے پرکاش جاوڑیکر کو کیبنٹ منتری بنایا گیا ہے, اور مانو سنسادھن وکاس منترالے سونپا گیا ہے. امریکی راشٹرپتی باراک اوباما نے پہلی بار راشٹرپتی پد کی دوڑ میں شامل ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کے سمرتھن میں ایک ریلی میں شرکت کی. अमरीकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक जेम्स कोमी ने कहा है कि सरकारी काम के लिए निजी सर्वर और निजी ईमेल इस्तेमाल करने के मामले में हिलरी क्लिंटन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया नहीं जाना चाहिए। सऊदी अरब के शाह सलमान ने सोमवार को मदीना में पैगंबर की मस्जिद के पास हुए आत्मघाती हमले पर कहा है कि वो इस हमले के दोषियों से कड़ाई से निपटेंगे। इराकी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रविवार को बगदाद में हुए आत्मघाती धमाके में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 250 तक पहुंच गई है। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। अभी मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।